آج کل
प्रिय श्रोताओं, कार्यक्रम आजकल में आपका स्वागत है। मरियम मेहरदादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए।
ब्रिटेन वो देश है जहां एक वर्ष में 200 दिन सूरज नहीं दिखाई देता, यानी वहां अधिकांश बादल छाया रहता है। आजकल वो अधिक अंधकार का अनुभव कर रहा है। इस्लामोफोबिया के बहाने मानवीय और नैतिक मूल्य दिन प्रतिदिन अंधकारमय होते जा रहे हैं। ब्रिटेन में मुसलमानों की जनसंख्या 30 लाख से अधिक है और इस्लाम इस देश में दूसरा धर्म है। इनमें से आधे मुसलमान शताब्दियों से ब्रिटेन में रह रहे हैं, जबकि आधे दूसरे देशों के पलायन करता है। ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों को इस समय असुरक्षा सहित विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों का सामना है।
तेलमामा ब्रिटेन की एक गैर सरकारी संस्था है और वो इस देश में इस्लामोफोबिया से संबंधित अपराधों को पंजीकृत करती है। इस संस्था ने अभी हाल ही में अपनी रिपोर्ट में कहा था कि पिछले एक वर्ष में मुसलमानों के विरुद्ध घृणा में 70% वृद्धि हुई है। इसी प्रकार इस नागरिक संस्था ने बताया है कि जिन अपराधों को पंजीकृत किया गया है उनमें से 60% का निशाना हिजाब करने वाली महिलाएँ बनी हैं। यह आंकड़ा ऐसी स्थिति में पेश किया जा रहा है जब विशेषज्ञों का मानना है कि पुलिस और न्यायिक तंत्र पर भरोसा न होने के कारण इस्लामोफोबिया की भेंट चढ़ने वाले आधे लोग इन हमलों की शिकायत ही दर्ज नहीं कराते। इसी प्रकार ब्रिटेन में टेलीफोन सहायता केंद्र की रिपोर्ट बस स्टॉप और मेट्रो जैसे सार्वजनिक स्थलों, नगरों और मस्जिदों में मुसलमानों के विरुद्ध मारपीट और अपशब्द की सूचक है और इन लड़ाइयों में भेंट चढ़ने वाले पुलिस और अन्य संबंधित संस्थाओं से संपर्क करते हैं।
लंदन में इस्लामी मानवाधिकार आयोग ने भी ब्रिटेन में रहने वाले इस्लामी समाज की परिस्थिति के बारे में रिपोर्ट प्रकाशित की है, जो इस बात की सूचक है कि इस समय इस्लामोफोबिया मुसलमानों के विरुद्ध घृणा फैलाने का बहाना बन गई है। इस आयोग की रिपोर्ट में आया है कि ब्रिटेन में रहने वाले बहुत से मुसलमानों का जनमत सर्वेक्षण किया गया और उसके परिणाम स्वरूप ये बात पता चली कि वर्ष 2010 की तुलना में इस समय इस्लामोफोबिया की स्थिति बहुत खराब हो गई है और वो इस्लामी समाज के विरुद्ध जातीय भेदभाव फैलाने का माध्यम बन गई है।
इस सर्वेक्षण के परिणाम इस बात के सूचक हैं कि वर्ष 2010 में जिन मुसलमानों पर घिसे पिटे आरोप लगाए गए उनकी संख्या 10% थी, पर इस संख्या में वर्ष 2015 में लगभग 40% की वृद्धि हो गई। इसी प्रकार जो लोग इस्लामी कानूनों व शिक्षाओं के पालन को अपना दायित्व समझते हैं और स्वयं को उसके प्रति कटिबद्ध समझते हैं, उनका मानना है कि ब्रिटेन के राजनेता इस्लाम धर्म को समस्या मानते हैं।
लंदन में इस्लामी मानवाधिकार आयोग की हालिया रिपोर्ट में आया है कि जिन लोगों से पूछताछ की गई है उनमें से 66% लोगों ने दावा किया है कि उन पर शाब्दिक हमले किए गए। इस रिपोर्ट में आया है कि जिन लोगों ने इस सर्वेक्षण में भाग लिया उनमें से 58% लोगों ने कहा कि किसी प्रकार के प्रमाण के बिना ही ब्रिटेन के सुरक्षा तंत्र उन पर संदेह करते हैं और इसी प्रकार सर्वेक्षण में भाग लेने वाले 87% लोगों का मानना है कि जो लोग मुसलमानों के विरुद्ध भेदभावपूर्ण व्यवहार करते हैं वे संचार माध्यमों से प्रभावित होकर ऐसा करते हैं।
लंदन में इस्लामी मानवाधिकार आयोग ने अपनी हालिया रिपोर्ट में इस्लामोफोबिया को मुसलमानों में घृणा फैलाने का माध्यम बताया है, क्योंकि जो चीज़ें इस शोध के परिणाम में सामने आई हैं वे इस बात की सूचक हैं कि ब्रितानी समाज मुसलमानों के विरुद्ध घृणा से भरा है और ये घृणा मुसलमानों के व्यवहार के कारण नहीं है, बल्कि ये उस परिस्थिति के कारण है जो इस देश के संचार माध्यमों और राजनेताओं के क्रियाकलापों से अस्तित्व में आई है।
पेरिस में होने वाले आतंकवादी हमलों के बाद पश्चिमी विशेषकर ब्रिटेन के मुसलमानों के लिए जीवन कठिन हो गया है और ब्रसेल्स आतंकी हमलों के बाद हालात और ख़राब होने की आशंका है। आतंकवाद की सबसे अधिक भेंट मुसलमान चढ़ रहे हैं। उदाहरण के तौर पर फिलिस्तीनियों के विरुद्ध ज़ायोनी शासन का सरकारी आतंकवाद, यमनी जनता के विरुद्ध सऊदी अरब और उसके घटकों का सरकारी आतंकवाद, और इस्लामी देशों में दाइश का तकफीरी आतंकवाद। आतंकवाद के इन समस्त स्वरूपों को अमेरिका और पश्चिम का व्यापक समर्थन प्राप्त है और इन सब में भेंट चढ़ने वाले लगभग सभी मुसलमान हैं। परंतु खेद के साथ कहना पड़ता है कि पश्चिमी संचार माध्यमों और सरकारों ने भेंट चढ़ने वालों को ही भेंट चढ़ाने का जिम्मेदार बता दिया है। परिणाम यह हुआ कि अब इस्लामी समाज पर आतंकवाद का आरोप मढ़ा जाता है और वो घृणा से भरे वातावरण का साक्षी बने हुए हैं, जबकि स्वयं लाखों मुसलमान आतंकवाद की भेंट चढ़ चुके हैं।
ब्रिटेन की एक मुसलमान महिला गार्डियन समाचार पत्र के साथ साक्षात्कार में कहती है, मैं एक पश्चिमी महिला और पूरी तरह स्वतंत्र हूँ। मैं ब्रिटेन की एक नागरिक हूँ, इसी प्रकार एक मुसलमान हूँ। इन दोनों चीज़ों में कोई विरोधाभास नहीं है। मेरे अंदर समस्त वो बातें पाई जाती हैं जो मैंने कही, परंतु पेरिस हमले जैसी घटनाएं इस तस्वीर को दूसरा रंग देती हैं। जो कुछ मैं सोचती थी उससे ज़्यादा मेरी ज़िंदगी प्रभावित हो गई है। मैं सोचती हूँ कि इस कहानी को अपने सीने में लिए रहूँ और जिस हालात में हूँ उसकी शिकायत भी न करूँ। परंतु मैं कहना चाहती हूँ कि जब मैं सार्वजनिक स्थलों पर होती हूँ तो ऐसा लगता है जैसे लोग मुझे नहीं देख रहे, केवल मेरे स्कार्फ को देख रहे हैं। जब लोग मेरे पास से गुजरते हैं तो बड़े ध्यान और क्रोध से मुझे देखते हैं। इसका मेरे निकट कोई महत्व नहीं है, किंतु ये कि एक मुसलमान होने के नाते हर स्थान से दुत्कार दिया जाता है, इसके बारे में अच्छा आभास नहीं रखती हूँ, जैसे कि मैं पापी हूँ। मैं ये आभास नहीं करना चाहती कि एक भेंट चढ़ने वाली या भेंट चढ़ाने वाली हूँ। जिन निर्दोष लोगों की हत्या कर दी गई है, मैं भी उनके लिए आंसू बहाना चाहती हूँ।
लंदन की रहने वाली 27 वर्षीय शर्मा भी कहती हैं कि मैं ये देखकर थक गई हूँ कि मुसलमान माफ़ी मांग रहे हैं। मैंने कोई गलत कार्य नहीं किया है। हम भी पहले से अधिक खतरे में हैं। मैं एक शिया मुसलमान हूँ, दाइश भी हमारी हत्या करने के लिए हमारे पीछे है। ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमान उसी नगर और उसी मोहल्ले में रह रहे हैं जहाँ पहले रहते थे। उनकी जीवन शैली और मूल्यों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, परंतु उनके विरुद्ध दिन प्रतिदिन घृणा में अधिक वृद्धि हो रही है। क्यों सार्वजनिक रूप से इस्लाम के विरुद्ध घृणा में गति आ गई है, जबकि ब्रिटेन में रहने वाले 30 लाख मुसलमान कार्यस्थल, स्कूल, कॉलेज और सार्वजनिक स्थलों आदि पर दूसरों के साथ शांतिपूर्ण ढंग से पेश आते हैं। उन अपराधियों के हाथों मुसलमानों की हत्या की ओर मानवीय ध्यान जाना चाहिए जो स्वयं को मुसलमान कहते हैं। उनके हमलों में मारे जाने वाले मुसलमान इंसान हैं, परंतु कितनी चालाकी से भेंट चढ़ने वालों पर ही हमले का जिम्मेदार होने का आरोप मढ़ दिया जाता है। ब्रिटिश अध्ययनकर्ता और लेखक पीटर ओ बोर्न का मानना है कि कुछ राजनेता और ब्रितानी समाचार माध्यम इस्लामोफोबिया को हवा देते हैं, और उनका मानना है कि श्याम वर्ण के लोगों और दूसरे अल्पसंख्यकों के बाद अब मुसलमानों की बारी आ गई है ताकि वे पश्चिमी समाज में भेंट चढ़ें।
ब्रिटेन विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर मिलर का मानना है कि नियो कंजर्वेटिव और ज़ायोनी संगठन सरकार को ऐसे कानून बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं जिससे नागरिक अधिकार समाप्त हो जाएं। वो इसी प्रकार कहते हैं कि वो नीति और कानून जिसे सरकार आतंकवाद विरोधी बताती है, इस देश में इस्लामोफोबिया और जातिवाद को हवा देते हैं। पश्चिम में इस्लामोफोबिया और इस्लाम के विरोध के लिए शैलियाँ भिन्न और विस्तृत हैं।
ब्रिटेन में मुसलमान परिषद के एक सदस्य ताहा अहमद कहते हैं कि पेरिस हमलों के बाद हम इस बात के साक्षी थे कि संचार माध्यम, यहाँ तक के राजनीतिक वर्ग भी इस विषय को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ने के प्रयास में थे, जबकि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो इस बात का सूचक हो कि पेरिस हमले की योजना मस्जिद में बनाई गई थी। इसके साथ ही अगर पेरिस हमलों के बाद राजनीति की ओर देखें तो आप पाएंगे कि अन्यायपूर्ण ढंग से मस्जिदों और मुसलमानों के संगठनों को निशाना बनाया गया है।
ब्रिटेन के संचार माध्यम भी मुसलमानों के विरुद्ध घृणा फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले ब्रिटेन के एक संचार माध्यम ने दावा किया था कि ब्रिटेन के हर 5 में से एक मुसलमान जिहादी गुटों से सहानुभूति रखता है। इस प्रकार का दावा किसी प्रकार के अध्ययन व प्रमाण के बिना ही किया गया है और वो ब्रिटेन में रहने वाले समस्त मुसलमानों के विरुद्ध घृणा में वृद्धि करता है। जातिवाद के मुकाबले में डट जाओ गुट के एक सदस्य साबी डालू ने कहा कि पेरिस हमलों के बाद हम इस्लामोफोबिया में वृद्धि के साक्षी थे, परंतु संचार माध्यमों ने इस घटना से संबंधित खबरों को इस प्रकार से कवरेज दिया जिससे इस प्रक्रिया में और भी वृद्धि हो गई।
कुछ लोगों का मानना है कि ब्रिटेन की सरकार आतंकवाद से मुकाबले के लिए जो प्रस्ताव पारित करती है और इसी प्रकार इस देश के संचार माध्यम खबरों को जिस प्रकार से कवरेज देते हैं, इस्लामोफोबिया सबसे अधिक इन्हीं चीज़ों से प्रभावित है। इसी संबंध में इस्लामी मानवाधिकार आयोग के एक सदस्य आरजू मीर अली कहते हैं, आज हम ब्रिटेन में सार्वजनिक वातावरण के अधिक से अधिक विषम होने के साक्षी हैं। ब्रिटेन में ऐसे संचार माध्यम हैं जो मुसलमानों के बारे में अपनी रिपोर्टों में इन हालात को हवा देते हैं। हमारे पास ऐसी सरकार और राजनेता हैं जो मुसलमानों का चेहरा बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं और पुलिस जैसा कानूनी तंत्र है जो मुसलमान विरोधी कानूनों को लागू करता है।
रिपोर्ट इस बात की सूचक है कि पश्चिमी संचार माध्यम खबरों को कवरेज देने की अपनी शैली से मुसलमानों की छवि को बिगाड़ कर पेश कर रहे हैं। इसी प्रकार ब्रिटिश सरकार की नीतियां वास्तव में आतंकवाद से मुकाबले के स्थान पर इस देश के इस्लामी समाज को अलग थलग करने के प्रयास में हैं, ताकि इस माध्यम से वो पश्चिम विशेषकर ब्रिटेन में इस्लाम को फैलने से रोक सके। वर्ष 2013 में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार प्रतिवर्ष 5,000 ब्रितानी मुसलमान हो रहे हैं जिनमें से आधे गोरे हैं और उनमें 75% महिलाएं हैं। ब्रिटेन में रहने वाले मुसलमानों की जनसंख्या वर्ष 2001 में 16 लाख थी जबकि वर्ष 2010 में ये संख्या 29 लाख हो गई। ब्रिटेन में अधिकांश लोग जो मुसलमान होते हैं इस्लाम की ओर रुझान का मुख्य कारण अपने देश में आध्यात्मिक संकट और नैतिक पतन को मानते हैं और इस्लाम को शरणस्थल के रूप में पाते हैं। महान व सर्वसमर्थ ईश्वर पवित्र कुरान में कहता है, वे ईश्वरीय प्रकाश को अपने मुंह से बुझा देना चाहते हैं परंतु ईश्वर ऐसा नहीं करने देगा यहाँ तक कि अपने प्रकाश को पूरा करे, यद्यपि काफिरों को ये बात पसंद नहीं है।